Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna.
Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha, Giridhare Radha, Giridhare Radha. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Gauranitai, 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 Haribol, Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी भूमज्ञाज्वरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वावदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णमादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने श्रीवाशवानवी देवी नयिताय कृपाब्धये विश्वसम्बन्ध विज्ञान दायिने तवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिद श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते नमस्ते गौरवाणि श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये हेतलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते सौराविभागुमेश्वर निर्देशा सज्जनप्रिय वैश्वसारभाव श्री जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशै नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो वृष्टालव्यसेव्यमानः स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेण स्वनेर्गोपी गोपीनाथः श्रीयस्तु नः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि विषवानसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैता गदाध श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। आज हम भगवद्गीता का एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे।
जिसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के आधार के ऊपर मैंने ये संस्था को स्थापना किया है। मैंने कहा कि इस श्लोक को मैंने अपने जीवन में उतारा है और इस श्लोक को अपने जीवन में उतार के मैं इस संस्था की स्थापना मैंने किया है। तो ये श्लोक है भगवद गीता का दूसरे अध्याय से, मेरे बाद उच्चारण करने के लिए प्रयास कीजिएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धे एकेय गुरुनंदना बहुशा गायरंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धे एकेय गुरुनंदना बहुशा गायरंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धे एकेय कुरुनंदना बहुशाकायनंतस्य बुद्धयो व्यवसायिनां। इसी बात है श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धे एकेय कुरुनंदना बहुशाकायनंतस्य बुद्धयो व्यवसायिनां। 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 और कोई व्यवसायात्मिका बुद्धे एकेय गुरुनंदना बहुशाकायनंतस्य बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धे एकेय गुरुनंदना बहुशाकायनंतस्य बुद्धयो व्यवसायिनां। अनुवाद और तात्पर्य जुड़ाएंगे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद जो इस मार्ग पर चलता है वे प्रयोजन में दृढ़ रहता है और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञान नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृतः। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावनामृत को जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बांध कर कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्म में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ अशुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं करना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कर्म आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे तथा बुरे का दोनों का अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि निहात बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना बिना व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भलीभांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा डालियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य को प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और कृष्ण भावनामृत की दिशा में कर्म करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण की प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मानना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् नगति कुतोपि ध्यायन्स्तवन्तस्य यशस्ति संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए, किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्म से इंद्रतृप्ति की कोई संबंध नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जैसे मैंने कहा। श्री प्रभुपाद जी एक बार इस श्लोक के ऊपर प्रवचन देते हुए उन्होंने कहा, ये जो संस्था की जो सफलता है, ये श्लोक को मैंने अपने जीवन में धारण किया इसलिए सफलता प्राप्त हुई। अभी समझना चाहिए इस श्लोक का अर्थ क्या है। सबसे पहला श्लोक में कहा गया है व्यवसायत्मिका बुद्धि। बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास एक ऐसा एक हथियार समझ लीजिएगा। बुद्धि ऐसा चीज है जो सबके पास है, लेकिन प्रश्न यह है कि हम इस बुद्धि को कहां लगाएंगे। वेयर आर वी गोइंग टू पुट आवर इंटेलिजेंस। जब हम इस बुद्धि का प्रयोग करेंगे इंद्र तृप्ति के लिए, तब उस बुद्धि को अव्यवस्था इनाम कहा गया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, वो बुद्धि जो आत्मा की ओर केंद्रित किए हुए रहता है, तो उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा गया है। दो प्रकार का व्यवसाय है, एक है आत्मिक व्यवसाय यानी आत्मा का व्यवसाय, दूसरा है शरीर का व्यवसाय। जो कोई व्यापार करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, या कोई अन्य कामकाज करता है, ये सब शरीर का व्यवसाय हुआ, यानी वो कार्य जिसके द्वारा शरीर का पालन पोषण होता है। लेकिन आत्मा का पालन पोषण करने वाला कार्य को कहा गया है व्यवसाय आत्मिका, आत्मिका व्यवसाय। वो बुद्धि जिसके द्वारा हमारा व्यवसाय आत्मिका हो, यानी आत्मा की उन्नति हो, उस प्रकार का बुद्धि का लक्षण क्या रहेगा है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदना। एक ही कुरुनंदना का अर्थ क्या है? एक ही कुरुनंदना का अर्थ ये है, इस संसार में भले ही अनेकों अनेकों चीजें क्यों ना हो, लेकिन केवल वो एक ही चीज के ऊपर विचार करता है, उसी चीज को करता है, विचार करता है उस चीज के ऊपर, और इतना विश्वास रखता है केवल मुझे यही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक यह कुरुनंदना करती है। जैसे आपको परपोर्ट में या इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक कोट करते हैं। वो कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास हुए सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कर लेन सर्वकर्म कृत है। ये जो श्लोक में एका ये जो शब्द है बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। एका ये शब्द का व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्ति कर लेन सर्वकर्म कृत है। अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व में जो कृष्ण भक्ति नहीं करता है वह अनेक चीजों को करता जाता है, लेकिन एक के भी संतुष्ट नहीं रहता है। जैसे एक बंदर है, कभी एक शाखा के ऊपर बैठ के कुछ करता है, बाद में कूद के कहीं और जाता है, बाद में कहीं कूद के कहीं और जाता है। वैसे ही जो कृष्ण भक्ति में नहीं है या कृष्ण भक्ति नहीं करता है, वो बंदर जैसा एक शाखा से दूसरी शाखा में वो घूमता रहता है और पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जीवन समाप्त होने के बाद कोई और योनि में बैठ जाता है, उधर भी कुछ करता है, बाद में कुछ और योनि में बैठ जाता है। ऐसा पूरा 84 लाख योनियों में बंदर जैसा भटकता रहता है। लेकिन जब कोई कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है, उनका लक्ष्य केवल एक ही रहता है, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनको एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है श्रद्धा। इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में ये श्रद्धा की व्याख्या करते हैं। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा शब्द है विश्वास, विश्वास कहले। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, लेकिन किस प्रकार का विश्वास? श्रद्धा शब्द है विश्वास पर सुदृढ़ निश्चय, निश्चय कर चुका है। क्या निश्चय कर चुका है? कृष्ण भक्ति कर ले, अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। ये है, इसको श्रद्धा कहा गया है। जैसे एक पत्नी को अपनी पति में श्रद्धा है, इसका अर्थ क्या है? मैं अगर पति की सेवा करूंगी, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी वो श्रद्धा में कमी हो जाती है, वो क्या सोचती है? ठीक है, पति का तो जरूर सेवा करूंगी, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ रिजर्व में रखना पड़ेगा किसी को भी। तो इसको अश्रद्धा कहा जाता है। इसी प्रकार जो एक भक्त होता है वो ये जानता है, मैं अगर कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितना भी वो राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितना भी वो परिवार के दृष्टिकोण से भी कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये सब जो भी है वो सब गौण है, समय मिला मिलेगा तो मैं करूंगा, लेकिन अस्तित्व में वो सब चीज करने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व में ये श्लोक आता है भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 40-41 श्लोक में, आप सबको मालूम है भगवद गीता का दूसरा अध्याय में 11वां श्लोक से 30वां श्लोक तक भगवान आत्मा की ज्ञान देते हैं, शरीर और आत्मा का भेद का ज्ञान देते हैं। उसके बाद 31वां श्लोक से लेकर 37वां श्लोक तक कर्मकांड के अनुसार हे अर्जुन तुमको अपने कर्तव्य करना होगा, क्योंकि तुम्हारा तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुमको युद्ध करना है, ऐसा समझाते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है वो बात। बाद में भगवान कहते हैं 38वां श्लोक में, हे अर्जुन तुम युद्ध करो, किसके लिए करो, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम युद्ध करो, भले ही लोग कहें तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करने के लिए, लेकिन तुम्हारा परम कर्तव्य है मेरी आदेश को मानना, इसलिए तुम युद्ध करो। बाद में 39वां श्लोक में भगवान ने कहा कि एषा ते विदा सांख्ये बुद्धि योग तुम इमं सुनो, अभी तक मैंने सांख्य योग का वर्णन किया है, अभी तुम सुनो, किसका बात सुनो, बुद्धि योग सुनो। तो ये बुद्धि योग एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, केवल इस बुद्धि योग शब्द को भगवद गीता में वापरा गया है, अन्य कोई भी उपनिषदों में या ज्ञान योग आता है या कर्म योग आता है, लेकिन ये बुद्धि योग शब्द करके भगवान ने भगवद गीता में खास करके इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि बुद्धि योग ऐसा है, कर्म और ज्ञान का जब दोनों का संयोग होता है उसको बुद्धि कहा गया है। अभी समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्ञान है कोई कार्य करने में, कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको मालूम है, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो क्या फायदा। मान लो कोई चीज करने जा रहे हो लेकिन आपको कैसे करना चाहिए अगर वो नहीं मालूम है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर आधारित जब हम कुछ कार्य करते हैं, जय श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री गौर निताय की, जब हम ज्ञान के ऊपर आधारित होकर कार्य करते हैं तभी सफलता प्राप्त होती है। तो इस ज्ञान और कर्म के बीच में जो योग है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है, बुद्धि है। इसलिए भगवान ने कहा, अभी मैं बुद्धि योग का वर्णन करने वाला हूं। बुद्धि योग का वर्णन करने वालों का अर्थ क्या है, कैसे आप ज्ञान को, यानी अभी जो मैंने बताया उस ज्ञान को कर्म के रूप में परिणित कर सकते हो या कर्म के साथ जोड़ सकते हो, इन दोनों की जोड़ने की जो विधि है उसको बुद्धि योग कहा गया है। यानी बुद्धि के द्वारा ज्ञान के ऊपर आधारित होकर कर्म करने की जो क्रिया है उसको बुद्धि योग कहा गया है। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को, मैं अभी तुमको बुद्धि योग सुनाऊंगा। अस्तित्व में एक तरीके से बताया जाए बुद्धि योग कुछ और नहीं है, कर्म योग है, लेकिन ये बुद्धि योग किस प्रकार का कर्म योग है, वो ऐसा कर्म है जो ज्ञान के ऊपर आधारित हो। क्या है वो ज्ञान, जो देहात्म बुद्धि से परे जो ज्ञान है, मैं ये शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान के ऊपर आधारित हुए किए गए जो कर्म है उसको बुद्धि योग कहा गया है। अभी बाद में 40वां श्लोक में इस बुद्धि योग का महिमा को वर्णन करते हैं कि नेहाविचरणाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायतो महतो भयात्। हे अर्जुन, जरा सा भी थोड़ा सा भी अगर कर लेता है बुद्धि योग को तो महान भय से मुक्त हो जाता है, कम से कम वो मनुष्य जन्म को तो प्राप्त करता है, वो कम से कम चार पैर तो नहीं मिलेगा उनको अगर थोड़ा सा भी इस बुद्धियोग को कर लेता है। तो उस बुद्धियोग का वर्णन करने से पहले भगवान इस श्लोक में बहुत स्पष्ट कहते हैं ये क्या है, ये बुद्धियोग जिसके बारे में वर्णन करने वाले हैं ये है क्या। व्यवसायत्मिका बुद्धि है, ऐसा बुद्धि जो एकदम बिल्कुल मान के बैठा है कि क्या मान के बैठा है, अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सब फालतू चीज है इसके सामने। जब तक इस प्रकार की साक्षात्कार हृदय में नहीं रहता है तब तब तक कृष्ण भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। हमको ये निश्चय कर लेना चाहिए, अगर मैं जप कर रहा हूं मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं गीता भागवत पढ़ रहा हूं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं मुझे कुछ और की सेवा करने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास, इस प्रकार का विश्वास के ऊपर ही पूरा प्रभुपाद जी ने संस्था को स्थापना किया है। श्री प्रभुपाद जी को ये पूरा विश्वास था, अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो अगर बाद में देखा जाए इसी श्लोक का तात्पर्य, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्ति करने का अर्थ क्या है। कृष्ण भक्ति करने का अर्थ है कि गुरु के आदेश के अनुसार अपने कार्यों को करना, यानी भले ही शास्त्रों में कहा गया है भक्ति के विषय में इसे भी कर सकते भक्ति, वैसा भी ये करने से भक्ति होता है, वो करने से भक्ति होता है, ये करने से भक्ति होता है। जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया हुआ तो आप जाएंगे एक दुकान में, एक केमिस्ट के शॉप में, दवाई के दुकान में जाएंगे, वो मलेरिया के लिए अनेकों अनेकों प्रकार की दवाइयां हैं, लेकिन आप कौन सा दवाई लोगे? आप वही दवाई लोगे जो डॉक्टर ने कहा है कि नहीं। तो ऐसे ही भले ही शास्त्रों में अनेकों अनेकों उपदेश भले ही कहा गया है, लेकिन आप कौन सा चीज को पालन करोगे? जो आपके गुरु ने कहा है उसी को पालन करेंगे। भले ही अन्य चीजें शास्त्र में कहा गया है, अच्छा भी लग सकता है, आप कर भी सकते हैं, अनेकों लोग कर भी रहे हैं, लेकिन आप क्या करोगे? वही चीज करोगे जो गुरु ने कहा है। तो इधर व्यवस्था है, आपने कहा बुद्धि एक गुरु नंदना, अर्थ क्या है? एक का अर्थ है कि गुरु के आदेश को पालन करना। अगर मैं गुरु के आदेश को पालन करता हूं तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी, ये गुरु जी ने क्या कहा था, श्रील भक्तिवत्सल ठाकुर ने क्या कहा कि आप अंग्रेजी में कृष्ण भक्ति का चैतन्य महाप्रभु आंदोलन को विश्व भर में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी का ये आदेश श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 1922 में दिया था। तो वो समय से लेके पूरा अंतिम सांस प्रभुपाद जी लिए तब तक उनके मन में एक ही चीज गुंजन रहा था। क्या है वो एक ही चीज जो गुंज रहा था? मैं कृष्ण भक्ति को सारा विश्व में कैसे स्थापना करूं, ये मेरा गुरु का आदेश है तो इसको मैं कैसे पालन करूं। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद जी कुछ भी नहीं सोच रहे थे। तो इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने क्या व्यवहार किया, इस प्रकार प्रभुपाद जी ने सोचा, इसलिए हम सब लोग इधर बैठे हैं, है कि नहीं। तो श्री प्रभुपाद ने कहा ये संस्था को स्थापना करने के पीछे ये जो श्लोक है, एक यह कुरुनंदना, ये मैंने अपने जीवन में धारण किया है। मैं जब भी कुछ भी किया हूं केवल इसी बात को केंद्रित करके किया हूं, क्या ये जो मैं कर रहा हूं मेरी गुरु की वाणी को, आज्ञा को संपूर्ण करने के लिए है तो मैं करूंगा, नहीं तो वो नहीं करूंगा, उससे कुछ मेरा मतलब नहीं है। इसको शरणागति कहा जाता है। अगर आपको याद होगा पिछली बार मैंने संडे के इस प्रोग्राम दिया था तो शरणागति के 6 लक्षणों के ऊपर हमने प्रवचन दिया था। तो शरणागति के ऊपर 6 लक्षणों के कितना ही प्रवचन भी देंगे तो कृष्ण का शरण लेने का अर्थ है गुरु का शरण लेना। गुरु का शरण लिए बिना हम कृष्ण का शरण नहीं ले सकते। तो गुरु का शरण लेने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि जो गुरु जी दे रहे हैं सुख सुविधा का अनुभव करना, नहीं। शरण का अर्थ यह नहीं कि उनके द्वारा दिया गया सुख सुविधा को अनुभव करना, उल्टा उनको सुख पहुंचाना, इसको शरण कहा जाता है। उनको आनंद प्रदान करना, इसको शरण कहा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस अभी गुरु के शरण में है, इसका अर्थ क्या है? गुरु जी जो देंगे सब सुविधा को हम स्वीकार करेंगे, हम उसको भोगेंगे, उसको गुरु भोगी कहा जाता है। लेकिन हम गुरु सेवी नहीं कहा जाता है। गुरु सेवी वो है जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु को कैसे सुविधा प्रदान करूं और गुरु की आज्ञा को कैसे पालन करूं, इसके बारे में विचार करता है। तो जो गुरु का इस प्रकार विचार करता है, गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के प्रयास करता है, उनके जीवन में कुछ और नहीं रह जाता है। वो एक बिल्कुल एक तरीके का पागल हो जाता है। सारा समाज उसको कहता है तुम पागल हो गए हो। क्यों? क्योंकि उनके विचारधारा हमेशा हर प्रकार का सोच विचार केवल एक ही चीज पे रहता है कि मैं अपने गुरु का आदेश को कैसे पालन करूं। जैसे श्री प्रभुपाद जी जब प्रयास कर रहे थे मैं कैसे विदेश में जाके इस संस्था को स्थापना करूं, कैसे प्रचार करूं, उनके स्वयं के गुरु भाइयों ने कहा था ये बड़ा असंभव काम है, बहुत मुश्किल है। हाँ, श्री भक्तिवत्सल ठाकुर भी अपने गुरु भाई आपके गुरु भाइयों को बहुत भेजा है लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए। आप ऐसा कार्य को संपन्न करने जा रहे जो नामुमकिन है, आप जाओ ये मत करो। ऐसा बहुत सारे लोगों ने उनको बताया कि मत करो करे, फिर उत्साह किया प्रोत्साहन नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद जी केवल एक ही सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? श्रद्धा शब्दे विश्वास। क्या विश्वास था? विश्वास था कि कृष्ण भक्ति कर लेन। कृष्ण भक्ति करने का अर्थ क्या है? गुरु का आदेश पालन करना। मगर मैं गुरु का आदेश पालन कर रहा हूं सर्व कर्म कृत होय, ये समझ लो मैंने सब कुछ कर दिया है। अगर नहीं भी किया है तो समझ लेना कर दिया है। कुछ भी हो जाए चाहे वो कितना भी प्रकार के कार्य क्यों ना हो। इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ प्रकार क्रमशः यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। जैसे जो कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न होता है तो उसे अपने कार्यों के शुभ अशुभ फल का चिंता नहीं करना चाहिए। जैसे आगे कहते हैं जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार मानवता या राष्ट्रीयता से बांधकर कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति परिवार के साथ, कोई समाज के साथ, कोई राष्ट्र के साथ बांध के कार्य करना चाहता है लेकिन उनको इस सब के साथ कोई लेन देन नहीं रहता है, उनको केवल एक ही चीज की चिंता रहता है कि मैं कैसे कृष्ण भावना की स्थापना करूं, कैसे मैं गुरु की आज्ञा को पालन करूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम अनेकों अनेकों चीजों के बारे में चिंता करते हैं, अगर मैं भक्ति करूंगा तो मेरा वृद्धापा में क्या होगा, अगर मैं अगर भक्ति को करने लग जाऊंगा थोड़ा सा धंधे में थोड़ा कम काम ज्ञान दूंगा तो मेरे बाल बच्चों को क्या होगा, मैं ये नहीं कैसे कर पाऊंगा वो कैसे कर पाऊंगा, बहुत सारे मन में इस प्रकार की चिंताएं आती हैं। लेकिन ये सब माया के अलग अलग स्वरूप है। असल में श्री प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो भी श्री प्रभुपाद जी के जैसे वो भी इतने ही शरणागत थे। एक बार हम किसी से प्रवचन सुन रहे थे श्री प्रभुपाद जी शिष्य के, तो बता रहे थे श्री प्रभुपाद जी संस्था को स्थापना किए थे वो समय माहौल क्या था इस्कॉन में। तो कह रहे थे उस समय माहौल ऐसा था कि अगर कोई किसी को कहेंगे कि प्रभुपाद जी ने ये कहा तो आपको शरण आपको इस प्रकार सरेंडर होना है, प्रभुपाद जी की आज्ञा को पालन करना है, वो लोग खुश हो जाते थे और शरण लेने के लिए हमेशा तत्पर थे। They were always crazy, they were always very eager, उत्साह में थे, मैं कैसे और सेवा करूं, कि मैं कैसे और शरण में जाऊं, प्रभुपाद जी मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं प्रभुपाद जी के लिए। केवल उनके मन में एक ही बात था और कोई विचार नहीं था। तो प्रभुपाद जी के दृष्टि से बता रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ, वो जो मूड है उस प्रकार की जो भावना है वो अभी बहुत कम दिखाई पड़ रही है आजकल। हमेशा लोग सोचते हैं कि पहला मैं अपने बारे में सोचूं, अपने परिवार के बारे में सोचूं, बाद में मेरे गुरुजी की आज्ञा है और बाद में कृष्ण का भक्ति है वो सब बारे में सोचूं, ठीक है मैं थोड़ा सा भजन कर लूंगा और मैं अपना परिवार अपना जो चीजें हैं उसके बारे में चिंतन करूंगा। उस प्रकार के भक्त जो है उनकी संख्या बढ़ गई है। वैसे भी बहुत शरणागत भक्त भी हैं लेकिन साथ साथ में उन्होंने कहा कि उस समय मंदिरों में ऐसा माहौल था कि कोई भी बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी भी प्रकार का, चाहे माता हो चाहे प्रभु हो चाहे युवक हो चाहे खुद हो बुद्धिमान हो पामर हो, हर एक व्यक्ति के पास एक ही भावना थी, एक ही मूड था। क्या मूड था, क्या प्रकार किस प्रकार की भावना थी, मैं कैसे प्रभुपाद जी का आज्ञा को पालन करूं, कैसे मैं प्रभुपाद जी को प्रसन्न करूं। तो इस प्रकार की तीव्र शरणागति की भावना थी, शरण लेने के लिए तत्पर थे, वो बड़े प्रसन्न हो जाते थे शरण लेके। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को कहेंगे आप भगवान का शरण लीजिए, गुरु का आज्ञा स्वीकार कीजिए और गुरु का शरण लीजिए। उनको थोड़ा डर लगता है, अरे थोड़ा सप्ताह भी देख लूं, बाद में देखेंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन अपना भी थोड़ा सिक्योरिटी होना चाहिए। तो इस प्रकार की वजह से क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति ये जो केवल किताबों में रह गया और प्रवचनों में रह गया है। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ ही दिन पहले मैं सुना, हमको उस प्रकार की आदर्श भक्त जो है उनकी संख्या कम हो गई। वो क्या सोचते हैं कि सबसे पहला मैं अपना कुछ देखभाल करूं, बाद में थोड़ा बहुत हो सके मैं सेवा करूंगा। आप किसी भक्त से आजकल पूछिएगा, आप प्रभु जी थोड़ा सेवा करेंगे? आप बोलिए प्रभु जी थोड़ा जितना हो सके उतना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, क्या बोलिए करने के लिए तैयार है, हनुमान जैसे आगे नहीं आते। तो सोचे थोड़ा सप्ताह भी रखो, बाद दो हो सके दो भी। तो इस प्रकार की भक्तों की संख्या बढ़ गई। बड़ा ऐसा दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो संस्था का जो नींव है, वो नींव क्या था, ये श्लोक था, एक अय कुरुनंदना। तो प्रभुपाद जी ने अगर कुछ कह दिया तो तुरंत वो हो जाता, आगे पीछे कुछ देखते नहीं थे। एक बार वो भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी का एक चिट्ठी आया था एक मंदिर में, तो वो चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि प्रभुपाद जी ने कहा जो भक्त ऐसा जगह जाता है जहां कृष्ण को कोई नहीं जानता है, उधर जाके प्रचार करता है। किस भावना से प्रचार, कैसे जाता है, मुझे कहां रहने को जगह मिलेगा, कहां खाने को मिलेगा, और उधर मैं किसको जानता हूं, इन विचारों के बिना। तीन चीजों ने कहा, एक मुझे कहां रहने को मिलेगा, दूसरा मुझे कहां खाना कहां मिलेगा, तीसरा मैं किसी को जानता हूं क्या, मेरा कोई पहचान का है क्या। ये तीन विचार के बिना प्रभुपाद जी ने कहा कि वैसा भक्त का चरण का दूरी जो है मैं अपने सर के ऊपर रखता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी भी जब श्रीला बच्चन ठाकुर का जो आज्ञा पालन करने के लिए गए थे, कैसे गए, अमेरिका गए। तो अमेरिका गए थे तो उस समय उनको कहां रहूंगा, कहां खाऊंगा, और कौन मेरा पहचान का कौन है, उनको कोई इसका कोई चिंता ही नहीं था। उसी भावना के साथ उसी चीजों को मन में रखे प्रभुपाद जी अमेरिका गए। तो ने कहा कि जो व्यक्ति ये कार्य करता है तो अस्तित्व में कौन है, मेरे गुरु का प्रतिनिधि है। तो मेरे गुरु का प्रतिनिधि होने के नाते श्री प्रभुपाद जी ने कहा उस भक्त का चरण धूलि में सर के ऊपर धारण करता हूं। अभी ये जो खत आया एक मंदिर में आया, जैसे खत आता था तो क्या होता था, उस समय सब भक्त लोग साथ में मिलकर वो खत खोलते थे। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट पहले खोलते थे, बाद में उसके खत के क्या है बताते थे सब भक्तों को। प्रभुपाद से खत आया मतलब सब लोग अपना सेवा खत्म करके सब लोग साथ में बैठ जाते थे। बैठ के वो खत सामने खोल के, उधर का मंदिर या प्रेसिडेंट या कोई और होंगे लीडर, तो वो खोल के प्रभुपाद जी ने क्या लिखा वो पढ़ते थे। जब वो खत को पढ़ा सब लोगों ने कहा जय दया, सब लोग जय करके वो लोगों ने प्लान बनाया। चलो तो अलग अलग दल बनाए थे। एक दल क्या था, उन्होंने कहा कि अभी हम जाएंगे, कैसे जाएंगे, एक गाड़ी लेके जाएंगे। कहां जाएंगे, एक ऐसा गांव में जाएंगे जहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 0 डिग्री में बर्फ बन जाता है। आप समझिए कैसे किस प्रकार हालत होगा, -40 डिग्री मतलब। तो उधर गए, कैसे गए, वो कार में उतना ही पेट्रोल डाले जितना हद तक कि वो उधर तक पहुंच सकते हैं, और उन्होंने इतना ही प्रसाद दिया अपने पैक करके गया, जहां तक वो उधर तक पहुंच सकते हैं तब तक हो जाएगा। यानी जब उस जगह पहुंचेंगे कहां रहेंगे कोई ठिकाना नहीं, और वापस आने के लिए कोई पैसा नहीं है, और तीसरा चीज क्या है, कहां खाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं, वो ना जान ना पहचान। अभी एक प्लान था, और कुछ भक्तों ने कुछ प्लान बनाया, नहीं हम क्या करेंगे, बस ये एरिया में जाएंगे, इस जगह जाएंगे, और उस जगह एकदम बिल्कुल सब नशा करने वाले अनेकों जो गैंगस्टर लोग होते ऐसे लोग रहते, उधर जाएंगे, उधर जाके हम प्रचार करेंगे। सब जितने मंदिर में हैं एक को भी छोड़े बिना सब लोगों ने ग्रुप बना के प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, ये प्रभुपाद जी का आदेश है। क्या आदेश था, मुझे कहां खाने को मिलेगा उसकी चिंता के बिना, कहां रहने का ठिकाना नहीं है, और तीसरा कहीं कोई भी प्रकार के मुझे पहचान न जान पहचान के बिना, ऐसा तीन भावना को लेके जो जाता है उसका चरणदली प्रभुपाद ने कहा मैं अपने सर के ऊपर धारण करता हूं। इस आदेश को पालन करने के लिए क्या किया प्रभुपाद जी ने तुरंत सारे भक्तों ने क्या किया, वो प्लान बना के गए। अब ईश्वर प्रभुपाद जी कहते थे किस प्रकार उस समय लोग थे, या उस शिष्य ने कहा उनके शिष्य किस पे कितने शरणागत थे, शरणागति की भावना इतना थी तीव्र थी, हर एक मौका ढूंढते थे मैं कैसे प्रभुपाद जी की सेवा करूं, सेवा करने का मौका ढूंढते थे, शरण लेने की मौका ढूंढते थे। ये इस प्रकार की तीव्रता थी, ये कही है कुरुनंदना। तो जब तक इस प्रकार की तीव्रता नहीं होगी हमारा ये जो सकाम कर्म है उससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। ये सकाम कर्म को कर्मकांड कहा जाता है। ये कर्मकांड ऐसा चीज क्या है, ये क्या है कर्मकांड, वो क्या है कि मैं कुछ वैदिक नियमों का पालन करूंगा जिसके द्वारा मैं भी इस संसार में थोड़ा सा सुख भोगूं, मैं कैसे सुखी रहूं, थोड़ा सा धार्मिकता भी स्वीकार करूंगा, थोड़ा सा भक्ति भी कर लूंगा, और अंततः मूल भावना क्या है मैं कैसे सुखी रहूं। तो ये जो कर्मकांड नामक भयंकर सा ये अनर्थ जो है उससे अगर हमको मुक्त होना है तो क्या करना होगा, हमको गुरु का तीव्रता से शरण लेना होगा। विच सरेंडर टू कृष्णा कंप्लीटली। जब तक एक तीव्र भावना से जब तक हम कृष्ण का शरण नहीं लेंगे तब तक ये जो कर्मकांड नामक अनर्थ जो है वो नाश नहीं होगा, इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या रहेगा, ठीक है हम अपना परिवार अपना धंधा सब कुछ है, थोड़ा बहुत मंदिर में जाए दर्शन किए सौचन सुन लिया थोड़ा दान धर्म कर लिया, और महत्वपूर्ण क्या है मेरे जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मैं मेरा परिवार मेरा धंधा मैं मेरी संतुष्टि महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार की जो भावना वाले को प्राय भक्त कहा जाता है, उनको भक्त नहीं कह सकते, और बड़ा दुख की बात है उस प्रकार की धारणा वाले भक्तों की संख्या जो है अधिक मात्रा में बढ़ रही है। तो ये मेरी कहना नहीं है, प्रभुपाद जी शिष्य महात्मा प्रभु करके उन्होंने कहा। तो उन्हें पूछा, मैं कष्ट पूछा उनसे कि अगर इस प्रकार की भक्तों की संख्या बढ़ रही है तो हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी के बारे में बार बार बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी संस्था को क्या चाहते थे, किस प्रकार की संस्था चाहते थे, कैसे चाहते थे कि और कोई बहुत जो मंदिरें होती हैं, जैसे भारत में अनेकों मंदिरें हुआ करती थी, हुआ है भी, लोग क्या करते हैं मंदिर बनाया ठीक है, उधर एक पुजारी को रख दिया और उनको थोड़ा सा पगार वगार दे दिया, और उधर गए थोड़ा सा प्रणाम किए आगे, और मंदिर में बैठ के अपने परिवार अपने धंधे के बारे में चर्चा किया, और थोड़ा सा प्रार्थना भी कर लिया था भगवान से, भगवान मेरे थोड़ा सा संपत्ति दे दो, थोड़ा मेरा बेटी का शादी करा दो, मेरा ये करा दो। केवल इन्हीं बातों से चर्चा करना, चर्चा से भरा हुआ मंदिर जो है वो पहले से भी था भारत में, लेकिन प्रभुपाद जी इस प्रकार नहीं चाहते थे, ही डिजायर वॉन्ट लाइक दैट। प्रभुपाद जी किस प्रकार का मंदिर चाहते थे, वो चाहते थे कि उधर ऐसे भक्त हो जो कृष्ण के लिए गुरु के लिए प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। देवलिंग तो अगर उस समय वो भक्त ने कहा और प्रभुपाद जी बोलते थे तो इधर से कूद जाओ, कूदने के लिए भी तैयार थे। तो ऐसा नहीं कि एक दो भक्त ऐसा थे, तुमने कहा कि पूरा मंदिर में जितने भी लोग थे सब ऐसे के ऐसे लोग थे, एवरीबडी वाज लाइक दैट, दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ प्रभुपाद। तो उन्हें प्रभुपाद जी के समय में जिस प्रकार के भक्त थे ने कहा कि अभी उसी प्रकार के भक्तों को तैयार करना होगा। और कैसे होगा, जब हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बार बार चर्चा करेंगे, बार बार चर्चा करेंगे, वो क्या चाहते थे हमसे वो सुनना चाहिए, वो सुन के हमारे अंदर भी उसी प्रकार का आग होना चाहिए। कृष्ण भक्ति कर ले सर्वकर्म कृत है। तो हमारे सुख के बारे में कभी विचार नहीं करना चाहिए। अगर हम श्री प्रभुपाद जी का सुख के बारे में विचार करेंगे तो इससे बढ़कर कोई और सुख नहीं। तो उस समय वो कहते थे कि भक्त लोग का एक ही डर था कि प्रभुपाद जी मेरे से कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं की डर था कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए, और उसके लिए सब लोग केवल एक ही उद्देश्य को रखते हुए कार्य करते थे। क्या एक ही चीज को उद्देश्य कार्य करते थे कि कैसे प्रभुपाद जी को पसंद करें। और हर व्यक्ति के जिस प्रभुपाद जी आते थे मंदिरों में उन्हें कहा कि हर एक भक्त जो है वो देखते थे प्रभुपाद जी को, देखते थे कहीं गलती ना हमसे गलती ना हो गया हो, वो नाराज तो नहीं है। तो इस प्रकार की गुरु से या प्रभुपाद जी से प्रेम और विश्वास की भावना की वजह से उन्होंने कहा कि हम कैसे थे, मलेच्छ थे, किस प्रकार कैसे गटर में फले पड़े हम लोग, हम भी बड़े बड़े कार्य कर पाते थे। ने कहा कि एक भक्त ऐसा था जो हकलाता था, उनको अपना नाम बोलने के लिए बराबर नहीं होता था, अपने नाम बोलने के लिए भी बराबर नहीं बोला था कि ताकि अगर कोई समझ नहीं पा रहा वो क्या बोल रहे हैं। ये जो हकलाने वाला भक्त जो है वो एक दिन में 100 गीता जाके बात क्या रहता है, हैंड टू हैंड हकलाने वाला भक्त। तो ऐसे थे, तो ने कहा कुछ ऐसे लोग थे जो प्रभुपाद ने कहा कि 3 परिवार वालों को भेजा, आप इंग्लैंड जाओ प्रचार करो। तो उनको रहने का ठिकाना कुछ भी नहीं, वो गए, इतना महान कार्य किए, क्यों इनको सबको शक्ति कहां से आया, वो शक्ति कहां से आया, इस भावना से आया। क्या भावना से आया कि गुरु को प्रसन्न करना है। जो व्यक्ति के मन में तीव्र इच्छा रहता है कि मैं अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूं, उनको इतना शक्ति आती है, वो खुद को मालूम नहीं पता नहीं कहां से शक्ति आता है। लेकिन जो सोचता है कि मैं अपना शक्ति सामर्थ्य थोड़ा सा बना के रखूं, थोड़ा अपने सुख के लिए रखूं और थोड़ा बहुत हो सके सहयोग करूं, तो इस प्रकार की भावना जो रहता है वो अपना शक्ति भी खत्म हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये श्लोक में। रसायात्मिका बुद्धिर एक इह कुरु नंदना बहुशाकाय हंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। बुद्धयो अव्यवसायिनाम, जिसकी बुद्धि बहुशाखा रहती है। कैसे बहुशाखा, मतलब मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अथवा ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत इनका सेवा भी कर लूंगा, लेकिन मेन महत्वपूर्ण है मेरा जीवन, पहला मेरा जीवन, बाद में दूसरों का, बाद में किसी बार क्यों ना हो। तो जो इस प्रकार विचार रखता है तो उनको क्या कहा गया, बहुशाकायंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम कहा गया है। अव्यवसायिनाम कहा गया है, अव्यवसायिनाम का अर्थ क्या है, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी, यानी वो कभी कृष्ण भावनामृत में नहीं हो सकते। इसलिए श्री प्रभुपाद जी जो कि तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर का गुरु अष्टकम को कोट करते हैं। गुरु अष्टकम का जो 8वां श्लोक है जिसके अंदर कहा गया है कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोति। अगर गुरु प्रसन्न है, आप प्रभुपाद जी के मुख में प्रसन्नता लाए तो भगवान प्रसन्न है। यस्य प्रसादान भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादान, अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो न गति कुतोपि, कोई गति नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, ध्यायन स्तुवंतस्य यशः त्रिसंध्यम, तीनों संध्याओं में सुबह दोपहर शाम हमको ज्ञान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए, हमको ध्यान करना चाहिए ध्यायन स्तुवन, उनकी यशों का, उनका गुणों का ध्यान करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंत में कहते हैं, किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। चोरे कहा एक सैद्धांतिक रूप में नहीं, थ्योरेटिकल नहीं है, एक प्रैक्टिकल चीज है। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया, सुन के बहुत मजा आया, नहीं, एक सैद्धांतिक रूप में खाली सुनना नहीं है, बल्कि उसको अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए। जब अपने जीवन में आचरण में लाएंगे, आप देहात्म बुद्धि से तुरंत परे हो सकते हो। आप कितना भी कुछ भी कर लो, देहात्म बुद्धि से तभी परे हो सकते हैं जब हम ये कही है गुरु नंदना, जब गुरु की जो शरणागति लेंगे। शरण लेना का अर्थ क्या है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना, फॉर द सेक ऑफ गुरु के लिए, गुरु के प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना। अभी आप सबको मालूम है कि हमारे दिसंबर महीने में मैराथन होता है। मैराथन का अर्थ क्या है कि हम प्रभुपाद जी ग्रंथों को बांटते हैं। वैसे तो साल भर बांटना चाहिए, लेकिन ये जो दिसंबर के समय में बहुत तीव्रता से बांटते हैं। तो क्या हुआ, पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हमारे संस्था में कैसे शुरू हुआ, बहुत सारी किताबें प्रभुपाद छाप दिए थे और अपने भक्तों का बांटो। ये भक्त को पता नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो गाड़ी में जा रहे थे, तो क्या हुआ कि उस गाड़ी में बहुत दूर जा रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर, बहुत सारे किताबें भरे हुए थे उस गाड़ी में, दो भक्त लोग जा रहे थे, तो क्या हुआ पेट्रोल खत्म होने को आया। अभी क्या करेंगे, पेट्रोल बंक में गए तो पेट्रोल भरे, भरने के बाद दो भक्त बैठे थे, एक ड्राइविंग कर रहा था, उसके बाद में और एक भक्त था, ये भक्त ने कहा कि अभी पेट्रोल का पैसा दो। उसने कहा मेरे पास तो नहीं है, तो मैं सोचा तुम्हारे पास था, तो इससे सोचा उसके पास पैसा है, तो क्या हुआ वो दोनों पेट्रोल भर दिए गाड़ी में, अभी गाड़ी लेके जा रहे, तो क्या करें एक दूसरे का मुंह देख रहे। अभी तुरंत एक भक्त के मन में आइडिया आया, तूने तुरंत पीछे गया और जाके एक भगवद गीता निकाला, और एक निकाल के उन्होंने क्या किया वो पेट्रोल पंप वाले को दिया, तो इसने लिया, तो पेट्रोल पंप वाला समझ गया एक दूसरे का मुंह देख रहे मतलब क्या है, दोनों के पास पैसा नहीं है, तो देख के किताब को देखो आकर्षित हो गया, बोला कि ओके यू गो। तब ये भक्त लोग आए मंदिर में आके एकदम बड़े उत्साह के साथ बोले आज हमने एक किताब बांटा, और कैसे बांटा ये बड़ा स्टोरी बन गया, पेट्रोल पंप में बांट सकते इसका मतलब ये है। सब किताबें लेके गए पेट्रोल पंप में बांटना शुरू किया, ये बच्चे सोचा पेट्रोल में बांट सकते एयरपोर्ट में बांट सकते हैं, चलो एयरपोर्ट में गया कोई उधर गया, तो देखिए कहां से शुरू हुआ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोल पंप में शुरू हुआ। नहीं तो उन लोगों के मन में कोई आइडिया नहीं था कैसे किताब बांटेंगे, तो आइडिया भगवान देते हैं। अगर गुरु का सेवा करना चाहते हैं ना तो कृष्ण कुछ भी करते आपके लिए, केवल आइडिया नहीं, केवल विचार ही नहीं कैसे कैसे करना चाहिए, केवल आपको बुद्धि नहीं देते बल्कि साथ साथ में सुविधा भी देते, सब कुछ देते हैं, खाली हमारे अंदर की कमी क्या है, हमारे अंदर शरणागति की कमी है। देखिए अगर गुरु जो है कृष्ण की सेवा के लिए मदद करते हैं, उसी प्रकार गुरु की सेवा के लिए हमको कौन मदद करते हैं, कृष्ण मदद करते हैं, कृष्णा विल हेल्प यू। एक बार आप जानते हो चैतन्य चरितामृत में, तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा निकल पड़े, वो पूर्व ब्राह्मण के साथ उनका संपर्क हुआ, ये जो पूर्व ब्राह्मण के साथ जब संवाद हुआ, पूर्व ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु का चरण धोए, सब कुछ किए, भोजन खिलाए, उसके बाद उनका उच्चिष्ट ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी मैं इस संसार से तंग आ चुका हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। तब पूर्व ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आगे ऐसे मत कहो, निरंतर हरि नाम लो और जो भी जार जा को तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको मिलते हो उसको कृष्ण का उपदेश दो, अगर तुम इस प्रकार उपदेश दोगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो लोग देखिए वो कूर्म ब्राह्मण क्या कहता था कि मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ में जाऊं, लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, कब आऊंगा जब तुम जारेदास को तारे कहो कृष्ण उपदेश, जब आप ये किताब लेके जाओगे, लोगों से मिलने के लिए जाओगे, किताब बांटने के लिए जाओगे, तो ये समझ लीजिए आपके साथ कौन है, कृष्ण है। तो कृष्ण के साथ पूरा संसार है, सब कुछ है, खाली किसकी कमी है हमारे पास, शरणागति कमी है। वो मैं ये करना चाहता हूँ, किताब बांटना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ, ये गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ, इस प्रकार की तीव्र इच्छा की कमी है बस। अगर इस प्रकार की तीव्र इच्छा है आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। आप सोच सकते हो कि अफ्रीका के जंगलों में मंदिर का निर्माण कर सकता है कोई, किया, यानी असंभव संभव हो गया। कैसे संभव हुआ, ये गुरु को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर ये तीव्र इच्छा नहीं है तो संभव कार्य भी बराबर नहीं हो पाता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए ओ मेरा जिम्मेदारी है, मेरा वो है, बहुत सारे चाहिए, सर्व कर्म कृत है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जब आप कृष्ण के लिए प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए करने लगोगे तो बाकी जो भी करने के लिए जो ये चीजें हैं वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक अपने आप होता है। ये बहुत सारे जो भक्त हैं जो तीव्रता से शरणागति को स्वीकार किए हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनका यही अनुभव है। क्या अनुभव है, जब हम कृष्ण के लिए काम करते, गुरु के लिए काम करते, अपना काम ऑटोमेटिक होता है, और अपना काम करने जाएंगे तो ना कृष्ण का काम होगा ना अपना काम होगा। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट रास्ता क्या है, यही है रास्ता, यही है कि कि सब को जो भगवान के ऊपर छोड़ो और गुरु का सेवा करो, जस्ट गो एंड फाइंड अप होके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। आप देखिए कि अपना काम जो भी होना होता अपने आप होता जाएगा, ऑटोमेटिक होता जाएगा। एक बार हमारे गुरु महाराज आए थे, ने कहा कि हम लोचन, बोला हाँ महाराज, ये मंदिर कौन चलाता है, ये सब चीजें क्या क्या कौन क्या करता है। मैंने कहा कि मैं चुप रहा था, कुछ नहीं बोला, हंस रहा था। तो तुम्हारा मंदिर क्या ऑटोमेटिक टेम्पल है क्या? तो मैंने कहा महाराज थोड़ी थोड़ा कम इधर जो पढ़ लेता हूँ, इधर उधर चर्चा करते हैं, इधर प्रवचन होता है, इधर प्रचार कर लेते हैं, जब मौका मिलता है हम कृषि वाले चर्चा करते जब करते हैं तो, और थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी का सेवा करना चाहते सेवा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो उसने कहा कि ओके गो अहेड। यार उसे कहना ये था कि आप केवल प्रचार करते रहो तो अपने आप सब कुछ प्रकट होता जाएगा, एवरीथिंग इज मैनिफेस्ट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये विश्वास अत्यंत में भक्त को चिंता करना, हाँ इससे बड़ा गुना कुछ और नहीं है। मान लीजिए थोड़ा बहुत वो नियमों में इधर उधर थोड़ा सा आगे पीछे कभी हो जाता है किसी कारणवश, वो इतना बड़ा गुना नहीं है जितना चिंता करता है मेरा क्या होगा, इससे बढ़कर कोई गुना नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और उनकी माता पिता है, बड़ा अच्छी तरह से देखभाल करे, बड़े मेरी है माता पिता, वो बच्चा कभी शरलत करता है, कभी नटखट करता है, माता पिता उतना वो दुखी नहीं होंगे, थोड़ा हो जाएंगे, थोड़ा डांटेंगे पटकारेंगे ठीक है। लेकिन जब एक दिन वो बच्चा के पिताजी को कहता है, पिताजी थोड़ा सा मेरे नाम पे थोड़ा सा आप 10 लाख रुपए रखो, पिताजी बोलते क्यों, तो पता नहीं आप कुछ भी कभी भी हो सकता है, मुझे धोखा दे सकते हो आप, छोड़ के जाएंगे लगता है। पिताजी को देखा लगेगा दुख लगेगा मेरे पर इसका, हाँ मुझे चिंता हो रही है। जब बच्चा बोलता है ना माँ पिता को, मुझे चिंता हो रही है मेरा क्या होगा, आप मुझे देखभाल करेंगे कि नहीं, मम्मी को बोलता है पता नहीं मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या मैं दूसरे घर में बोल के रखूँ आप मुझे उनसे खाने के लिए आप मुझे देंगे कि नहीं मालूम नहीं मुझे, हाँ माँ को कैसे लगता है। जैसे एक पत्नी बोलती है पति को, देखिए पता नहीं आप कभी भी मुझे छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए मैं 2-3 लोगों को भी बोल के रखती हूँ, वो पति को क्या लगेगा। तो वैसे ही कृष्ण को लगता है, वैसे ही गुरु को लगता है, जब हम उनको बताएंगे हाँ अगर आप पूरा आपका सेवा करेंगे तो मेरा क्या होगा, वो चिंता हो रही है। इसलिए भक्त को निश्चिंत होना चाहिए, केवल उनका एक ही चिंता होना चाहिए, मैं कैसे गुरु का सेवा करूँ। तो जब इस प्रकार की चिंता को अपने जीवन में धारण करेंगे, आप देखिए भक्ति में कितना आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। अक्सर में आप हवा में उड़ते रहेंगे, नहीं तो फिर जमीन पर सोए रहेंगे, रोते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसके अंदर प्रभुपाद जी अपने कमेंट में भी ने क्या कहा, कृष्ण भक्ति कर लेन सर्वकर्म कृतहाय, सब कुछ हो गया, कृष्ण भक्ति किया तो सब कुछ हो गया, सब कुछ करने गया वो भी नहीं हुआ, कृष्ण भक्ति भी नहीं हुआ। कृष्ण भक्ति कर लेन सर्वकर्म, इसको विश्वास कहा जाता है, इसको श्रद्धा कहा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में ये जो श्लोक है ये विश्वास और श्रद्धा के विषय में चर्चा करने वाला श्लोक है। अभी मैराथन आ रहा है, सब भक्तों के निवेदन है कि आप सोचो, आस्मरण करो प्रभुपाद के विषय में और ये ग्रंथों के विषय में सोचो, सोच के जितना हो सके उतना नहीं, मैं इतना करके दिखाऊंगा, कोई अंत नहीं है प्रचार का। कोई बोलेंगे प्रभु जितना हो सके उतना करेंगे, ये मतलब क्या ढीला करने वाली बात है, ऐसे भक्तों को साथ में रखेंगे हमारा भी उत्साह कम हो जाएगा, जितना हो सके उतना करेंगे, ऐसा नहीं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, आप कितना बोलिए उतना करके दिखाएंगे, उससे ज्यादा करके दिखाएंगे, ऐसे तीव्र भावना के साथ सबको लग जाना चाहिए। तो हमारे मंदिर में बहुत सारे भक्त जो है इस प्रकार की भावना से रहते हैं, लेकिन आप सबको भी तीव्र उत्साह के साथ रहना चाहिए, एंथुजियाज्म शुड बी देयर। अभी आप सब लोग विचार कीजिएगा, अगले हफ्ते से आप सबको बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, आपके काउंसलर्स को भी बुक्स मिल जाएंगे, हाँ भगवद गीता मिलेंगे, उन सबको आप जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा बांटने के लिए प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं? ठीक।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।